ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मोरंग के कटहरी में 2 अरब रुपए की लागत में निर्मित जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक आगामी आषाढ़ 15 गते तक प्रतिनिधि सभा से पारित हो जाएगा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुजी पंत का कथन। सुदूर पश्चिम प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 13 और गजा पर इसराइल के हमले में कम से कम 56 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण अस्पताल पहुंचे मरीजों की इलाज न पाकर लौटने की बाध्यता का अंत होना चाहिए। मोरंग के कटहरी में स्थापित जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल तथा टेक्निकल एजुकेशन फाउंडेशन का आज उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मरीज का चेहरा या आर्थिक हैसियत को देखकर नहीं बल्कि इलाज की जरूरत को देखकर सेवा मिलनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल के क्षमता विस्तार और मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए सरकार की ओर से भरसक सहयोग दिए जाने की प्रतिबद्धता भी जताई। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुजी पंत ने कहा कि विद्यालय शिक्षा संबंधी कानून में संशोधन और एकीकरण करने के लिए बने विधेयक 2080 आगामी आषाढ़ 15 गते तक में प्रतिनिधि सभा से पारित हो जाएगा। आज काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री पंत ने कहा कि शिक्षा विधेयक में सभी की जायज मांगों को संबोधित करने के हिसाब से काम हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों की मांगों को संबोधित करने के लिए दरबंदी मिलान और विद्यालय मर्ज करने के विषय में मंत्रालय काम कर रहा है। सुदूर पश्चिम प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। एंटीजेन जांच करने पर कैलाली के चित्रनगर नाके पर 3 और बैतड़ी के झूलाघाट में 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इससे पहले बीते 3 दिनों में 9 व्यक्तियों में संक्रमण पाया गया था। संक्रमित सभी नेपाली भारत से लौटे हैं। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशालय के मुताबिक यहां सुदूर पश्चिम में विभिन्न सीमा नाकों पर एंटीजेन जांच और परामर्श सेवा की व्यवस्था की गई है। बाजुरा की बूढ़ी गंगा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 बामका बाजार में कल नवदुर्गा होटल में गैस सिलेंडर के फटने से लगी आग में 35 दुकानें जलकर नष्ट हो गई। इस आग लगी में करीब 9 करोड़ रुपए बराबर की क्षति हुई है। जिला प्रहरी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक आग लगी में 35 दुकानें जल गई, जिसमें 8,77,65,000 रुपए बराबर की क्षति हुई है। इस बीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि क्षति का अनुगमन करके राहत और पुनर्स्थापना के लिए पहल की जाएगी। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खाद्य पदार्थ में स्वच्छता विज्ञान की अपरिहार्यता के नारे के साथ विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाया गया। इस मौके पर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग ने आज सुबह प्रभात फेरी आयोजित की। देश भर के इस्लाम धर्मावलंबियों ने आज अपना दूसरा सबसे बड़ा पर्व बकरीद उल जोहा मनाया। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पर्व के 17वें दिन में बकर ईद मनाने का धार्मिक चलन है। मुस्लिम धर्मावलंबी आज सुबह स्नान करके नजदीक की मस्जिद व ईदगाह में जाकर सामूहिक नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद एक दूसरे को शुभकामना प्रदान करते हैं। आज देश भर में निर्जला एकादशी मनाई गई। वैदिक सनातन धर्मावलंबी आज अपने घर पर विधिपूर्वक तुलसी का बीज रखकर निर्जला एकादशी मनाते हैं। इस दिन पानी भी ना पीकर व्रत करने से अभिष्ट फल मिलने की शास्त्रीय मान्यता है। बता दें कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात आज के दिन घर के मठ में रखे तुलसी के बीज से तैयार हुए तुलसी के पौधे को 1 महीने के बाद आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी के दिन में रोपा जाता है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम
भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी
नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ ने कहा कि हुलाक सेवा का आधुनिकीकरण होना जरूरी है। आज हुलाक सेवा विभाग द्वारा विराटनगर में आयोजित अन्तरक्रिया में उन्होंने कहा कि राणा शासन में स्थापना हुए हुलाक सेवा का आधुनिकीकरण करके सेवा प्रवाह अच्छा बनाना होगा। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने परिवर्तन का अनुभूत होने के हिसाब से दीर्घ आर्थिक समृद्धि हासिल करना अब के साझा गंतव्य होने का धारणा व्यक्त की। आज से झापा के बिरता मोड़ में शुरू हुए प्रदेश स्तरीय विज्ञान तथा प्राविधि प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि जन स्तर पर परिवर्तन का अनुभूति दिलाने के हिसाब से काम करना होगा। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने जनता की आवश्यकता और प्रत्यक्ष समस्या से जुड़ी हुई सेवा प्रदान करने के कामों में राष्ट्र सेवकों को संवेदनशील बनना होगा। राहदानी विभाग द्वारा सुदूर पश्चिम प्रदेश के सभी जिलों के जिला प्रशासन कार्यालय में राहदानी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मंत्री राणा ने कहा कि राहदानी अब नागरिकों का आधारभूत अधिकार है, इसलिए इस सेवा को देने वाले कार्यालय के फ्रंट डेस्क पर रहने वाले कर्मचारियों को और अधिक जिम्मेवार होना होगा। झापा की अर्जुन धारा नगरपालिका वार्ड नंबर 11 स्थित नमुना सामुदायिक वन भीतर रहे पोखरी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले बच्चों में 13 थुम की जीरी खिमती के अर्जुन धारा वार्ड नंबर 11 में 12 वर्षीय महसूस गुरुंग और 10 वर्षीय सुजल गुरुंग है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय झापा के सूचना अधिकारी खगेन्द्र खड़का ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइली सेना ने रविवार के सुबह गजा पर बहुत बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में कम से कम 56 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। अल जजीरा की खबर के अनुसार इसराइली सेना का यह बेहद घातक हमला था। स्थानीय अस्पताल की ओर से लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इसराइली सेना ने हमले के दौरान गजा के थाईलैंड के एक बंधक का शव बरामद किया है। IDF ने कहा है कि इससे हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को अपहरित कर लिया था। इस दौरान हमास के आतंकियों ने इसराइल में 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 238 इसराइली नागरिकों और कुछ विदेशियों का अपहरण कर लिया था। इसके जवाब में इसराइली सेना लगातार गजा पर हमले कर रही है। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने पाकिस्तान के पूर्व विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो जारदारी के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल से कहा कि उनके देश को जैसे मोहम्मद जैसे चरमपंथी संगठनों को खत्म करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अमेरिकी सांसद ब्रैंड शेरमैन ने राजधानी वाशिंगटन में गुरुवार को पाकिस्तानी शिष्टमंडल से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं को चरमपंथ को काबू करने की अहमियत बताई है और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन को खत्म करने की अपील की है। उन्होंने जैसे मोहम्मद के लिए घिनौने शब्द का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के साथ 10 मई को संघर्ष विराम के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपना पक्ष समझाने के लिए दुनिया के कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मोरंग के कटहरी में 2 अरब रुपए की लागत में निर्मित जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल का प्रधानमंत्री ओली ने किया उद्घाटन। विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक आगामी आषाढ़ 15 गति तक प्रतिनिधि सभा से पारित हो जाएगा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुजी पंत का कथन। सुदूर पश्चिम प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 13 और गजा पर इसराइल के हमले में कम से कम 56 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।